से कहा, ये प्रभु हम तो ब्रह्मलोक जा रहे थे किंतु आप ब्रह्मलोक नहीं जाएंगे, और पहले आपका दर्शन कर लें इसके बाद में जैसा हो उनको बैकुंठ लोग। ऐसे ही और ऋषि मुनि लोग उनके पास में आए, जैसा जो चाहा, प्रभु हमको मुक्ति चाहिए। अधिकांश लोगों ने उस समय मुक्ति मांगा, भक्ति सबरी ने और उनके गुरु मातंग ऋषि
इत्यादि,
वो पहले ही चले गए, जटायु ये सब भक्ति मांगते। और अधिकांश लोग ब्रह्म ऋषि थे, उन लोगों ने उनसे मुक्ति इत्यादि की मांग की, उन्होंने जो कुछ को आप मांगा उनको वो दे दिया। अब ये लोग अपने भाव को गए तो रामचंद्र जी को देखा, स्तुति स्तुति की, प्रणाम किया, और जो बात कहने वाली थी लज्जा के मारे कह न सके। क्या मांगना था उनको? ये कहना था हम लोगों ने श्रुतियों के भावों को सुना है, और हम लोग गोपियों ने, वो लोग गोपी होकर के कृष्ण की जो सेवा की है, गोपियों की सेवा की है, हम भी उसी प्रकार से कामयुक्त होकर के कृष्ण के का रूप और उनका उपभोग करना चाहते। काम, कामना शब्द वहां पर दिया है, काम तमात्मी का भक्ति है वहां, कामानुगा उसको हम चाहते हैं, किंतु ये कहना संभव पर नहीं है उनसे, मर्यादा पुरुषोत्तम है इसलिए नहीं कर सके। किंतु भावना हुई कि आप ही के जैसा जिस कृष्ण का रूप है उस रूप को गोपियों जैसा ही हम भी उनकी सेवा कर सके और उसको प्राप्त कर सके, किंतु लज्जा के मारे वो रामचंद्र जी ने मन ही मन में आप समझ वंशा कल बतल है कृष्ण ही है, चंद्र का कुछ भाग जैसे ढका होने पर भी वो चंद्र ही है ऐसे। उन्होंने कहा ठीक है, बस उन्होंने भी कोई ऊपर से वर नहीं दिया, भीतर ही जैसे भीतर न भीतर इन लोगों ने कामना की मांगा और उन्होंने भीतर भीतर वरदान दे दिया और जोग माया को आदेश दे दिया और जोग माया ने ब्रज में इनका जी को स्वामी बतला रहे हैं। यहाँ पर ब्रज में गोपी शरीर में जन्म लेने से ही समस्त प्राकृत भाव दूर नहीं हो जाता, कुछ प्राकृतिक प्रभाव बनता है, शरीर में नहीं रहे जो माया के द्वारा है ना, किंतु भाव में अभी कुछ रहता है प्राकृत भाव। इसी प्राकृत भाव को दूर करने के लिए ही जोग माया ने ये खर में उनको आवत रखा और कृष्ण स्वयं वहां पर चले आए। आने पर अपने आंखों से उनको भीतर में ले जाकर के उनका लिंगन किया और उसका वह जो भाव था वो दूर हो गया। अब फिर तो उनको राशि में उपस्थित कर और भी समय इन लोगों का हुआ, उसी के लिए तो जन्म देते हैं गोपीग्रह से, एक भाव जन्मे अहंकार जन्मे वैसा और नित्य सिद्धाओं का संग, इसलिए सादृश्य देख करके उद्दीपना होकर के तब इन लोगों को जो मैंने सुजोग दे करके और तब वो नित्य सिद्धा जैसे ही ये साधन सिद्धा। ऐसे ही कोई भजन यदि करे तो उनको या तो महाप्रभु जी के परिकरों से या महाप्रभु जी के लीला में उनका हो जाए प्रवेश जोग माया के द्वारा, अथवा जब जब कृष्ण की लीला प्रकटित हो गई उसमें किसी न किसी रूप से आ गए, किंतु पहले यही होगा महाप्रभु जी का, रामचंद्र जी का और लोगों का संग होकर के उनकी कृपा से। किंतु होगा कब? जब ऐसे भजन करेंगे तब, बिना ऐसे भजन किए हुए नहीं। उत्कंठा के सहित में, अत्यंत आसक्ति के सहित में, तदात्म होकर के वैसा भजन, दिन रात उसी की ही चिंता होगी, जैसे ये घर में है और चिंता होगी ऐसे ही। इसलिए सनातन गोस्वामी जी ने कहा इसलिए वहाँ ये लोग सब समझ सकते हैं। इसलिए कहते हैं जार भाव संसार के लिए सबसे खराब, किंतु गोपियों के लिए यही सबसे सर्वोत्तम भाव है, जो कि और महिषियों की अपेक्षा भी ये सबसे श्रेष्ठ है। इसी को शास्त्र शिक्षा ने कुछ बतलाया है। गावश्च कृष्ण मुख निरुगित वेणुगीत पीयूष मुद्भिद कर्णकूटैः विवन्द्या शाला शुभम तनपया कमलास्मकस्तु गोविंद आत्मनि दिशा सुकलास्तिशिंत। और हिरण्यं तो व्याख्या करते हैं, गावश चकिष्ट मन मुख निरोधक वेणुगीत, ये गाय कृष्ण के मुख से बंसी ध्वनि को सुनकर के गीत को सुनकर के पीयूष मुद्भिद कर्णकूटैः विवन्द्या, कर्णकूटों से कर्ण के दोनों से कान को दोना बना लिया, ऐसे ऐसे करती है, यदि कोई शब्द होता है तो ऐसे कर ले, इधर आएगा ना उधर ही कर लेती, घोड़े और गाय ऐसा ही होता है। मानो कृष्ण के मुख से गीत से गंगी से निकले हुए अमृत को कान के दोनों से चशकों से पी रहे। और उनके बछड़ों की बात तो सुनो, उनके बछड़े जो उनके दूध पी रहे थे स्तनपान कर रहे हैं, स्नुत उनके स्तन से जो स्नुत स्नुत माने जो अपने आप दूध चुचुआ रहा है, स्तन पाया कबला स्वतस्थु कबल तो ले लिया, कबल माने दूध,
दूध का कबल,
दूध का कबल यहाँ ले लिया, और न निकल पाते हैं न छोड़ पाते हैं, और स्तन मुख में है और कान वहां सुन रहा है, दांत दोनों से वो पी रही है, पी रहा है अमृत को, और इसको गले में रख रहे भूल गया पीना, बस वहीं पर लगा हुआ है दूध का कबल। गोविंद महात्मा ने दिशा सुपराश आंखों में क्या है, गायों के और इन बछड़ों के आंसू निकल रहे हैं, पी रहे हैं कान से, यहाँ का पीना बंद हो गया, गले में अटक गया वो दूध या घास के कबल, और आंखों से आंसू झरने लगे। सनातन गोस्वामी जी बता रहे हैं अनंत पूर्वोक्त मृगों से भी अधिक कृष्ण का संग करने वाली गायें और बछड़े हैं। कृष्ण बंसी वादन करते हुए, और यदि बंसी वादन बंद कर दिया बंसी बजाना, और मृगों के ऊपर में हाथ रखेंगे भागे, बस वहां तक देख रहे हैं। पालतू यदि हिरण हो तो दूसरी बात, जंगली नहीं। और ये गायें और बछड़े सब समय कृष्ण के ऊपर बछड़ों की लोरी पकड़ रहे हैं, लोरी मैंने कल कंबल, और सहला रहे हैं, और वो करें जो खुजला दो तो हमारा ये और भी कंधा करके कृष्ण के कंधे पर अपना सिर, गायों का भी बछड़ों का, बछड़ों से सख्त भाव और बछड़ियों से, और गायों से मातृ भाव, गायों को माता समझते हैं और इनको सखा सखी समझते हैं। और ये मृग से भी अधिक महिमा मंडित हैं, कौन उनका कैसा है, और कृष्ण ने जिनको अपने आप पाला है ना बचपन से, कितनी बड़ी महिमा होगी। यदि कहा ना कमले पिशंगी पद्मगंधा नाम रखा है, वो नाम कहेंगे और दौड़ते हुए गाय वहां पर पहुंच गए, कवली भवली गंगे पिशंगी चित कबरे, चित कबरा माने बहुत तरह के रंग, और इनका महात्मा कौन वर्णन करेगा। बचपन में कृष्ण जब छोटे हैं भुतरों के बल चलते हैं और चलते चलते गाय के पास में पहुंचते हैं, गाय खड़ी हो जाती है और कृष्ण ऐसे मुख कर देते हैं, दूध उनका चिचुआने लगता है उनके मुख में, अपने आप पीते हैं। इस श्लोक में गावर्ष चौ भी आया है और टू टू कहाँ है, गोविंदमात्मनि दिशा स्फुराश तू मने अक्षौ मने पहले की अपेक्षा अधिक, अतः मृगों से भी अधिक। पीयूष पीयूष किसको कह रहे हैं, दो पीयूष कृष्ण का मुखारविंद का जो सौंदर्य है वो पीयूष एक, और वेणु गीत में जो पीयूष निकल रहा है उनके मुख से निर्गत होकर के, ये दो पीयूष, दोनों में दोनों ही श्रेष्ठ हैं, कौन किसी से कम नहीं है। उस पीयूष दोनों पीयूषों को, कृष्ण की रूप माधुरी और वेणु माधुरी दोनों का, कृष्ण की चार माधुरी है ना, पांच माधुरी, चार माधुरी, वेणु माधुरी रूप माधुरी गुण माधुरी लीला, ये चारों का ही आस्वादन करती है हिरण भी। कैसे? रूप माधुरी देख रही है, वेणु माधुरी कान के द्वारा पी रही है, और गुण माधुरी कृष्ण द्रवित होकर के बड़ी कृपा की ओर से उनकी तरफ में देख रहे हैं ना? और कृष्ण का जब ये देखना देखती हैं तो और आकर्षित होती है, और लीला माधुरी से हाथों से उनको चलाना प्यार करना, ये सब लीला माधुरी। अथवा राधा कृष्ण सवेरे में शयन कर रहे हैं ईशान लीला, और उनकी हरिणी है पुरंगा, वो उठ करके बार बार रहा नहीं उसे जाता, खोज रहे थे कहाँ गई हमारी स्वामिनी जी कहाँ है, चारों तरफ में देखती है। सखियाँ कहती हैं जैसे आ रही जल्दी उठो, तुम्हारी पुरंगी तुमको देखने के लिए ललायित हो रही है, तुम्हारी सेवा करने के लिए बार बार इधर दौड़ती है इधर दौड़ती है। मयूर इत्यादि सब सभी लोग ये सब लीला माधुरी, कान को उठाकर श्रद्धारूप अंजलि परिपूर्ण करके परम मनोहर और मधुर कृष्ण से वेणु गीत से जो अमृत धार निकलती है उसका पान कर, विशेष करके गायें सात्विक होती हैं, यदि कीर्तन करते हुए जाओ तो खड़ी हो जाए मधुर स्वर सुने तो, और वहीं से सुनने लगती है। मुख को उठा देती हैं, इसलिए कान को उठाती हैं, ऐसे ऐसे झूल रहा है कान और उसको उठा दे, मानो वो अमृत जो है नीचे गिर नहीं जाए, इसलिए उसको ऊपर उठाए रहती हैं। ऊर्ध्वमुख में भी कराती हैं, ऐसे मुख उठा दिया इसीलिए कि वो गिर नहीं जाए अमृत, और उसको पान कर रही है। वो वत्स भी वैसे ही बछड़ भी आनंद में विवश हो गया,
गाय जैसे होती है।
सावस्नुत 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 माने दूध अपने आप चल रहा है, पिचवाने लगा गाय। बल्कि गायें ऐसे दूध नहीं देती, बछड़ों को देख करके नहीं देती, कृष्ण को देखने से ही आए बंसी ध्वनि सुनने से अपने आप दूध देने लगे, छोड़ देती है। आंखों में आंसू आ जाते हैं, छड़क आते हैं कृष्ण को देख करके और बंसी ध्वनि सुन करके, क्योंकि वो गोविंद है ना, गो माने गो गो गोपी, गाभी बीच में आ गई। यदि अविवेकी पशु जाति की अवस्था ये है तो और लोगों की क्या दशा होगी। इसलिए गोपियां कहती हैं खेद से, इनकी इतनी इनका इतना सौभाग्य, कृष्ण अपने हाथों से इनको संभालते हैं, बंसी ध्वनि सुनाते हैं और ये निकट से कृष्ण को दर्शन करने का सुयोग पाती हैं। इनमें से कोई भी सौभाग्य हमारा नहीं है, ये निकट से जाए कृष्ण हाथों से स्पर्श कर सके। इसलिए यदि हम लोग वो जाति में ही जन्म लेती और बछड़े और बछड़ियां होती तो हमारा जीवन का सुख
सितम मल्ली जातासी फुल्ला स्थल कमलिनी भिंगई संगतांगी विभासी कलयतवत्सखः क्षिप्रमस्मासु कस्मिन् वसति कपट कंदः कंदरे नंदसूनुः। श्लोक श्री रूप गोस्वामी कृत पद्मावली में है, ये रूप गोस्वामी का ही संग्रह है। श्लोक नंबर 296।
पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। महाबदन्नाय कृष्णप्रेमदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभांश भेदे धरित्री आ देविका कुभर गद गदयाद्यवाचा जाचे निपत्त भूमि दंडवत भटारती अस्य प्रसादम बुधस्य जनस्य अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जट्यं जागृतरूपि संविदधतं पट्टम्बरस्य वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसत्कृतं जन्तमन्ते तमते चतुष्टयं द्वैपायनो तिरहकाकर्यायुभाव कुतेति तन्मयतया कर्मोऽभिनेतु तं सर्वभूतं। तव तबई वासुनी तबई वासुनी तबई वासुनी तबई वासुनी नदीवामी त्वया विना इति विज्ञाय राधे
सुन करके पालकी रुकवा दी और बोले उनके चरण में जाकर के बोले जैसे मैं इसका अर्थ नहीं समझा आप नहीं ले गया उन्होंने बताया जैसे मैं कह रहा था कि कौन ऐसा मूर्ख है जो पैसा दे करके नागिन को ले आकर के यहाँ वो तो काटेगी तात्पर्य क्या है ये विवाह करके इतना पैसा खर्च करके ये जो लाया ये काली नागिन है और तुम्हें जरूर डसेगी ये संसार वाले ऐसे उनको समझाते ही बस पालकी वाले को कहा पालकी ले जाओ लौटा ले जाओ इस पालकी से मुझे जरूरत और वो रोती रोती पालकी में लौट गई है यही रामचंद्र जी हैं श्रीवास आचार्य ने उनको मंत्र दीक्षा दी समाज उनका विरोधी बन गया ऐसे विवाहित अभी नौजुवक और उसको ये संसार से विरक्त कर दिया ऐसे ही लोग साधु संत होते हैं उनका काम दूसरा नहीं ऐसा ही करते ऐसा जो समझे तब तक वो सुखदेव गोस्वामी की हरि कथा सुने उन्हीं के ये छोटे भैया थे ये बासुली जी की या दुर्गा की उपासना करते थे
बासुली देवी
मैंने कोई दुर्गा की ही कोई
नहीं चुंडी पूजा
वो पूजा करते थे देवी जी की पूजा करते थे एक बार खूब बीमार पड़े बड़े जोर से इन्होंने समझाया कि तुम उनकी पूजा छोड़ करके राधा कृष्ण की पूजा करो छोटा भैया मानता ही नहीं था मरने मरने हो गया जब बचने की कोई आशा नहीं रही एकदम बचने की आशा नहीं रही अरे अब तो तुम मर ही रहा है अब तुम मरेगा जरूर डॉक्टरों ने वैद्यों ने सब ने कह दिया अब कोई इलाज नहीं अब तुम एक दो दिन में मरेगा निकाल दिया सारे भले मानुष मैं कहता हूँ हमारे ऊपर भी विश्वास करो तुम एक बार तुम तो बहुत कवि है तुम भगवान का चरणों में शरणागत होकर के और उन्हीं का प्रयोग करो तुम ये मंत्र ले लो गुरु जी से उनके कहने से मंत्र उन्होंने खुद ही दे दिया गुरु जी के माध्यम से हरे कृष्ण का और जब जब ठीक हो जाना तब गुरु जी के पास ले चले बस उन्होंने वो हरे कृष्ण आरंभ किया और बस एकदम ठीक हो गए जब ठीक हो गए तब चले गए श्रीनिवास आचार्य के पास में और तब फिर गोपाल मंत्र इत्यादि की इच्छा मिली तो सबसे पहला यही पद बनाया दूसरों के लिए भजन रे मन बात किया भजन रे मन श्री नंद अभय चरण देवता देवियों का अभय चरण नहीं है कृष्णचंद्र ही हैं भजन मैंने सबके लिए प्रार्थना की और यही कीर्तन लिख करके जीव गोस्वामी के पास में दे दिया जीव गोस्वामी उस समय में नवदीप मंडल ब्रजमंडल और क्षेत्र मंडल तीनों एक छत्र वैष्णव सम्राट थे सब लोग इनकी तरफ में देखते थे कोई सिद्धांत विचार जो कुछ होता है बस इनके पास में आते तब वो मीमांसा करते, जो ये कह देते वही। तो उन्होंने लिख करके भेजा, पढ़ करके बड़े प्रसन्न हुए और सब वृंदावन के वैष्णवों को दिखलाया और दिखला करके तब इनको वैष्णव कवि के रूप में स्वीकार किया और पत्र में लिखा तुम बीच बीच में ऐसे ही सुंदर सुंदर पद ये वैष्णव लोग जो पद्य लिखते थे उसको कहते हैं ब्रजबुली। ब्रजबुली माने बंगला और हिंदी, ब्रज माने ब्रज की बात जैसी भाषा दोनों को मिला करके लिखते थे। साधारण आदमी इसका अर्थ नहीं समझे, बंगाली भी नहीं समझेगा और इधर ब्रजवासी नहीं समझे, दोनों का मिला हुआ रूप लेकर के वो। तो वही उन्होंने लिखा है अभय चरण देख लिया, ये वही कुछ नहीं, इनकी सहारा लेने से ही मैं ठीक हूँ, भाव सागर से पार कर गया। अपनी अनुभूति के ऊपर में लिखा थे दुर्लभ मानव जन्म सत्सम कर हुए भव सुन, सबके लिए कह रहे हैं यह मनुष्य जन्म दुर्लभ है। चौरासी लाख योनियों के बाद में यदि पुण्य पुंज सुकृति होती है तो मनुष्य जन्म मिलता है, और मनुष्य जन्म कहाँ, ये जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप देखने में भारतवर्ष में भी उत्तर भारत में भी ब्रज में जदिपुरी और उधर में नवद्वीप अभिन्न होने के नाते। तो दुर्लभ मानव जन्म सत्संग कर भाई भवसिंधु, यह भवसिंधु दूसरे जन्म में नहीं तरा जा सकता, मनुष्य जन्म में ही हो सकता और भी सत्संग में ही होगा। सत्संग माने भगवान की जो चर्चाएं होती हैं उसी में होगा और नहीं होगा। शीत आतप बात बरिशन ए दिन ज्ञान है ए दिन ज्ञानी जागिरे विफल से बिन कृपा न दूर जान चपल सुफल वाला शी आज का दिन जैसे शी आतप मैंने गर्मी
भगवतम पुनः पुलंद उर्गाय पदाब्जराग श्रीकुंकुमेन दयितास्तनमंडितेन तद्दर्शन स्मररुजतृण रूषितेन लिप्यन्ते आननकुचौश्च हौस्तदादि। सनातन गोस्वामी जी श्रीमद्भागवत से इसी श्लोक को ले रहे हैं। परीक्षित महाराज जी अपनी मैया को अंतिम समय में, जिस समय में सांप काटने वाला है, 10-5 मिनट पहले, एक घंटा पहले सुना रहे हैं। बृहद भागवतामृत की कथाएं समाप्त हो गई और उनको मैया को उपदेश दे रहे हैं। कब मरने वाले हैं, अब एक आध घंटे में ही सांप उनको काटेगा और वो मरेगा, विष चढ़ेगा। और उस समय में मैया भी उनसे यही पूछ रही है, बेटा हमने भागवत को ठीक से समझा नहीं, सुखदेव गोस्वामी ने जो बतलाया वो समझ में नहीं आया।
सेवन किया ना मरे, भी अधिक सेवन करेगा तो क्या होगा। उसी तरह से जो कोई संसार का सुख है उसकी अधिक सेवा की जाए, एक मात्रा तक है उसमें मालूम पड़ता है सुख, किंतु वो भी दुख ही है। इसलिए चपल सुख थोड़े से सुख के लिए, वो भी लौ मात्र सुख के लिए, विफल बेकार का वो भी मिलता नहीं, उसके लिए तू कर रहा है किंतु होता नहीं है विफल, कृपण पूर्वजम, उन लोगों के संग में रह करके। कृपण माने क्या है? जो इस जगत में जन्म लेकर के आत्मा का अनुसंधान नहीं किया, भगवान की सेवा नहीं किया, भजन नहीं किया, वो कृपण है। जो वायत आत्मी अभिदित आसमान लोकात प्रति सब कृपण, वो कृपण। और दूरजन भगवान से बहुत दूर है, इसलिए दूरजन, दूरजन जो निकट है वो उन्मुख है वो फल, और दूरजन इसमें दूरजन लिखा है, और दुर्जन मैंने दुष्ट जन, जो भगवान का नहीं भजन करते हैं वो जितने ईमानदार सत्यवादी सचरित्र जो कुछ हो वो सब दुर्गुणों के आकर हैं, जिसमें सब दुर्गुण हैं किंतु भगवान का भजन करते हैं उसको धर्मात्मा समझ। थोड़े दिनों में ही वो धर्मात्मा हो जाए, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वस्थांति निगच्छत। इसलिए संत लोग उनको भी संत ही कहते हैं। ये धन जौवन पुत्र परिजन इच्छे की आचे पर की तिरे, ये धन नहीं है, ये क्या करता है? धन आत्मा को हरण करता है। नित्यार्थी देता है ये धन, परमार्थ नहीं है ये, परमार्थ नहीं है ये। उसको हरण कर लेता है, कैसे? उसको संचित करने में, उसको रक्षा करने में सब समाज में लगा देता है, और अंत में छायाबाजी की तरफ में वो निकल जाता है और इसको दूध दे जाता है। सबसे ये छवि है धन, धन रहेगा ना तो मरवा देगा। देखते नहीं आजकल लोग आदमी अधिक इसलिए मर रहे हैं, 10,000 रुपया लेकर के चलते हैं और किसी को पता लग गया उसको 20 देकर, तो थोड़ी से पैसे के थोड़ा सा कुछ चीज़ है उसके लिए मार देते हैं। स्टेशन में गैंग रहते हैं चोरों का, ये सब जा कुछ भी लेकर के चलेंगे, आपके पीछे 3-4 लग जाएंगे, मित्र बन जाएंगे, और कुछ खिला देंगे, चाय खिला देंगे, पकौड़ी खिला देंगे, कुछ खिला देंगे और मार देंगे। रास्ते में चलते हुए कभी किसी अजंती के हाथ से कुछ मत लें, भूखो रह जाना, किंतु उनका हाथ का पानी चाय कोई भी चीज फल महाप्रसाद भी रहे, महा महाप्रसाद भी मत लो रास्ते। आजकल कोई ठीक नहीं है। ये धन कैसा है? इच्छे की आक्षे पर तिक्री, ये धर्म में प्रतीति है, प्रतीति है, विश्वास है नहीं, सबसे दगाबाज है कोई धर्म, आज इसी के लिए सब कुछ चल रहा है। वैसे ही जवन, जवन चिरस्थाई है नहीं, बस चमक दमक थोड़े दिनों के लिए बस समाप्त। पुत्र भगवत भजन नहीं करता है तो पुत्र नहीं, इसका ठीक करी। और परिजन परिवार के दूसरे लोग, अजी देखो भजन मत कर, युवावस्था में अभी धन उपार्जन करके संसार भोगो, और जब बुरा हो जाएगा तब भजन कर। यदि रात में भजन करते हैं तो सब घर वाले लग जाएंगे विरोध में, मत भजन कर, कोई भी नहीं कहेगा अपना बंधु जैसे भजन कर। इसी की आक्षे पड़ती, इसमें कोई विश्वास मत रखो। एक तो ये क्षणमात्र में और विरोधी ये सब है, कमल दल जल जीवन तल भजम हरिपद नी तिरे। कमल जैसे है उसका पत्ता होता है, कमल दल
पत्ता,
पत्ते के ऊपर में पानी डाल दो गोलाकार बन जाता है अंडा का, छोटे छोटे, और उसी के ऊपर में हवा के झोंकों में कभी इधर चले जाते हैं कभी इधर आते हैं, तब अभी हैं एक मिनट में फिर दूसरे से। ऐसे ही जीवन कमल पत्ते के ऊपर में पानी के बूंद की तरफ में हिल रहा है, हिलते डोलते रहते हैं, उसकी कोई स्थिरता नहीं, कभी इधर चले जाएंगे कभी इधर, ऐसे ही जीवन काल में जाएंगे। उपलब्धि करो, उन्होंने उपलब्धि करके लिखा भजन वो हरिपद, इसलिए प्रतिदिन भगवान का भजन करो। कैसे भजन करूं? भगवान अनुग्रह करके हरि कथा और हरिनाम के रूप में अवतरित है। संसारिक कथाएं जो शब्द सामान्य है, भगवान का नाम वैसे ही शब्द साधारण नहीं है। जैसे भी अरुचि रुचि अनर्थ सही जैसे भी करो, वो अपना फल जरूर दे। शुद्ध रूप से करोगे तो शुद्ध फल, अशुद्ध रूप रहने से संसारिक फल मुक्ति ले सकते। अपराध युक्त यदि नाम करोगे तो संसार में अर्थ रुपया पैसा स्त्री पुत्र परिवार ये सब मिल जाएंगे नमापराध से। और यदि नमाभास करोगे तो संसार से मुक्ति हो जाएगी, जो बड़े बड़े ज्ञानियों को नहीं मिलती। आप प्रेम से करोगे तो प्रेम भक्ति मिलेगी, ब्रज के भाव से करोगे तो ब्रज भक्ति मिल जाएगी। तो श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दशरे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष। गोविंद दास कहते हैं बस इसी की अभिलाषा है और कोई चीज की। बस उन्होंने इनको बड़ी सुंदर उपाधि दे दी और तब ये बनाने लगे। इनके पद बहुत से हैं, बहुत सुंदर और रसमय इनके पद है। का भी ऐसे ही चरित्र है। जितने ये सब हैं, कल भट्ट जी की मैं कह रहा था,
श्री भट्ट के बारे में,
उनका और कुछ नाम है, मैंने श्री उनका नाम के ऊपर में भट्ट है। वैसे ही सब अद्भुत ये तो ऐसे कवि हैं, सूरदास भी उनके सामने कुछ नहीं लगेंगे। सूरदास और हस्तछाप इत्यादि के ये गोविंद जी हैं, नरोत्तम ठाकुर जी हैं, ये क्या नाम चंडीदास हैं, विद्यापति हैं, ये तो ब्रज के पास, ये बासल लता उन्होंने ये वर्णन किया है। और हस्तछाप के कवियों ने ये कल जो गा रही थी संदेश वाला उन लोगों ने इतना रसपूर्ण नहीं किया, नहीं हो सका जितना कि इन लोगों ने किया पदावली में। बहुत ही सुंदर, यदि भक्ति रस ब्रजवस रस यदि चखना है तो इन कवियों चंडीदास विद्यापति नरोत्तम ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर ये सब, ये भी अप्राकृतिक हैं। सूरदास को भी प्राकृत में समझना, साधारण मनुष्य के लिए ये सब कवित्व संभव नहीं है। वो तो आंख नहीं थी और सब कृष्ण का रूप देखते हैं, भले बने हो ना। आज तो आपने सब कपड़े हटा दिए हैं और बड़े सुंदर लग रहे हैं। कित छोड़ी वह मोहन मुरली,
कित छोड़ी गोपी,
और सबको छोड़ करके अकेले कपड़े सब छोड़ दिए हैं और बड़े सुंदर लग रहे हैं। आज ऐसा जैसा रूप बन गए, ऐसे ये लोग थे। किंतु जिस प्रकार से ये चंडीदास विद्यापति जयदेव ये कृष्ण के और गोपियों संबंधी श्रीमद् भागवत का ये सब भाव लेकर के जो वर्णन किया है, दूसरों के लिए संभव कह ही नहीं सकते। उनको लज्जा आएगी या वो कहेंगे ये अनाधिकार चर्चा है, ये भावना ही नहीं कर सकते। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अप्राकृत कवि हैं। ये तो हो गया था ना। आकाश के बादलों की बात करी, उसे वो आगे बढ़ गए तो नदी की बात कहा। गोपियां कारी थी, ये दूसरों को पता नहीं लगने देंगे, किंतु उनका भाव नदस पदा पदार की मुकुंद गीत में सब कुछ अपने आप, जब मालूम हो गया तो उन्होंने भाव को ढक दिया। कैसे ढका? आकाश चारी मेघों को इतना वर्णन कर अपने भाव को ढक दिया, जैसे कि लोग समझ न सके। क्या वो कृष्ण से बंधुत्व स्थापित करके, और कृष्ण जब चलते हैं तो मेघ जैसी छाया करके और उनको और प्यारे बंधु के लिए सुशीतल पानी अपने आंखों के आंसुओं से उनको तर कर देते मेघों की। और तब जब उनसे और नहीं रह गया तो फिर एक निकल आया गायों का, गावस चतुष्ट मुख निर्गत
नहीं इसके बाद
गायो बतंग बिहगाम नयो बनिश। इसमें कुछ निकल आया बाप दिन वही। फिर उनको ठकने एक बोल रही है प्रकाश कर रही है, फिर एक को गायों का भाव आया, गायों के भाव से उनको ठका। इसमें बात्सल्य की भावना ले आया और सख्त की भावना ले आया। वो कृष्ण के साथ में इनकी कितनी सखा का भाव है, बछड़ों के साथ इतना प्यार करते हैं बछड़े इनको, और गायें माँ जैसी इनकी कैसी सेवा। उसके बाद में फिर कहने लगे वृंदसो गज वृषा मृग गावो वेणुवाद्य हृत चेतसयारा दंत दृष्ट कवलार्जित कर्णा निद्रित लिखित चित्रमिवासन। चौपाई के तरफ ये युगल गीतकार वृंदसो ब्रज वस्त्र ब्रज वृषा मृग गावो वेण बात गित चेत कितना कहूं। गोपिया सखी से गा रही नंदन नंदन जिसमें पेरू बाद्य वादन करते हैं उस समय दूर रहते हुए भी चित्त से आकृष्ट हो जाने के कारण ब्रज के वृंदसो ब्रज वृषा ब्रज के जितने वृष हैं, वृष माने बैल बैल और सांप, बैल ही व्यापक हो उसमें सांप सब आ जाए। गाय का तो आगे बढ़ने फिर भी यहाँ पर जाते हैं वृष मृग और गावो गाय। इसके अतिरिक्त सभी जितने पशु पक्षी हैं सब लिखित चित्र निवासन। लिखित चित्र मैंने क्या, जैसे चित्र अंकन कर देते हैं मानो स्पंदन वही चित्र लेखे के समान हो जाते हैं, कभी भी हिल दूर नहीं सकते एकदम। ये तो चलने फिरने वाले जंगम ये जड़ हो जाते हैं। कैसे ये क्यों ऐसे हो जाते हैं? दंत दृष्ट कबला धृत दांतों में कवल ये मुख में रखा ना तो मुख में ही कवल रह गया और बंसी बज रही है और सुन रहे हैं मुख बंद कर दिया। घास इत्यादि जो उनके मुख में है जो कुछ खाने की चीज है बस वैसे ही दांतों में ही पड़ा रह गया।
और कानों को भीत करना और कानों में कृष्ण की बंसी की ध्वनि को ऐसे बस कभी ऐसे ऐसे थोड़ा सा जिधर से शब्द आता है गली में थोड़ा सा कर खड़े कर, इसलिए गिर न जाए इसलिए नीचे नहीं कर, इस तरह से बोलूं। जब पशु पक्षियों की ये बात है तो गोपियों की क्या बात है, क्योंकि गोपियां करेंगी, इससे हमारा दुर्भाग्य जो हम लोगों का ये सुजोग नहीं होता। यहाँ पर गायों और उसके बाद में बैलों को और उनके सही पिचरण से मृगों को, ये सब पशु होने के कारण गोपियां करती हैं, एक तरफ में अपना दुर्दय और दूसरे तरफ में इनका महत्व, जो कृष्ण वेणुगीत और कृष्ण के मुखारविंद का सौंदर्य का क्या ये रहा, शांति के निकट शांति के लिए परस्पर चित्त बहलाने के लिए ये सब कृष्ण की लीला कथाओं का गान करती है। आप आगे वृंदसो हे सखियां, बड़ी विचित्र घटना देखो, ब्रज में वृष मृग और गाय दूर में रहने पर भी चल रही हैं, बहुत दूर बड़े मन से चल रही हैं, हरी हरी घास किरण विचरण कर रही हैं, बैल भी इधर दूर में है, और जहाँ कृष्ण की बंसी हुई ध्वनि, बस उनका मानो कृष्ण ने चित्त ही चुरा लिया,